بارك الدروس يا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود محمد
صلى الله عليه وسلم.
برد يا رب جاهي شكرا جاهي الفقر المسلمين أهل بيت الله عليه وسلم فكر سن اپنے دین سے آشنا فرمایا، اس دین پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ منتظموں تک ہمیں اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور کرنا ہے، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمانا ہے، اسی دنیا میں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمانا ہے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی حضور ادائے احترام، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پر دیا رہا رب نے قرآن کریم کے اندر اپنے مختلف اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اور جن صفتوں کو خدا نے اپنے لیے بیان کیا ہے اس میں سے انتہائی واضح روشن صفت خدا نندال کی اس کی حکمت ہے، اس کی دانائی ہے. دنیا بھر کے اندر جتنی بھی سائنسی ترقیاں ہوتی ہیں، جتنا بھی آبزرویشنز ہوتی ہیں، اسٹڈیز کی جاتی ہیں، تو وہ مسلسل اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نیچر کا شیڈیول کیا ہے، نیچر میں بیہیویئر کیا ہے. اور جیسے جیسے ہمیں نیچر کا بیہیویئر سمجھ میں آتا ہے، اس کے رول سمجھ میں آتے ہیں، ہماری طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے. بہت سارا سا ایک فینومینا اس گرمی میں سردی کرنے کا ہے، اس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہاں کی گرمی کو اپنی آسانی کے لیے سرد ہوا میں تبدیل کر رہے ہیں. اگر نیچر کے رولس کے اوپر ہمیں اتھارٹی نہ ہوتی، کنٹرول نہ ہوتا، ہم کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. جس خدا نمتار نے اس مادی دنیا کو، جس کا نام ہی اس نے دنیا رکھا ہے یعنی پس، جس اس مادی دنیا کو قانون پہ بنایا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے اعلیٰ دنیاؤں کو بغیر قانون پہ بنا دیا. یہ جو مادی دنیا ہے اس کو اسلام میں دنیا کہتے ہیں، اور دنیا کا جو لفظ ہے وہ عربی کا ایک اور لفظ ہے دنی، پس. زیادہ آپ نے دعا ندبہ کے اندر دیکھا ہوگا، اس کے اندر آیا الدنیا دنیا، وہ زخرفہا وزبر جہا، دنیا جو پست ہے اور اس کی خوبصورتیاں، اس کی رانائیاں جو انبا کے اندر تذکرہ ہوئے، تو یہ جو پست دنیا ہے اس کو خدا نے ایسے قوانین پر بنایا ہے کہ یہ جو شٹلز بھیجے جاتے ہیں خلا کے اندر، یہ کروڑوں کلومیٹر کے بعد اگر اپنی جگہ پہنچنے میں چند سینٹی میٹر کی غلطی کریں تو یہ بچ نہیں سکتے، یہ تباہ ہو جائیں گے. پرفیکشن اتنی زیادہ ہے وہاں پر، ریگولیشن اتنی زیادہ ہے کہ چند سینٹی میٹر کی غلطی بھی نہیں کی جا سکتی. جس خدا نے اس دنیا کو ایسا بنایا اس نے اس سے اعلیٰ، اس سے جو اونچی دنیا ہے، اس سے بہتر دنیا ہے، ان کو کیسا بنایا ہو؟ اور جب اس نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے اور یہ دنیا ایسی ہے کروڑوں، اگر نہ کہوں اربوں سالوں سے، جو لوگ اسٹڈیز کر چکے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بگ بینگ کا ایشو ہے، اس بگ بینگ کو ہوئے بھی اندازاً 15 ارب سال ہو چکے ہیں، 15 بلین ایئرز. جس سولر سسٹم میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کو بنے ہوئے بھی اندازاً 5 ارب سال ہو چکے ہیں، 5 بلین ایئرز. اور جو زمین کے اوپر زندگی ہے، اس زندگی کو جانوروں کی صورت میں بھی جو کچھ ہے، اس کو تقریباً 390 ملین سال ہو چکے ہیں، 39 کروڑ سال سورج زمین کے اوپر زندگی کو ہوئے. ہمیں نہیں معلوم انسان کب سے ہے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہے یہاں پر، یہ سب کچھ خدا کے قانون کے تحت چل رہا ہے. تو یہ سب جاننے کے بعد انسان یہ بات سمجھ پاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کچھ قوانین پہ بنایا ہوگا، ان سب کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے. صرف ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی، یہ جو اتنا باشعور بنانے والا ہے، اتنی حکمت کے ساتھ بنانے والا ہے، مجھے اس نے ایکسٹرا بنایا ہوگا یا یہ بھی سسٹم کا کوئی پیس ہوگا؟ یہ جو خدا ہے، خدا تو حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے، سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا ہے. جس نے یہ چھوٹے چھوٹے سسٹم بنائے ہیں، مثلا جس نے اسپیکرز اور مائک کا سسٹم بنایا ہے، جس نے کیمرہ بنایا ہے، جس نے بلڈنگ بنائی ہے، اس نے بھی ایکسٹرا پیسز نہیں ڈالے ہوں گے. یعنی چھوٹے سے کیمرے کے اندر بھی اگر کوئی چاہے 5-10 پیسز باہر نکال لے، ممکن نہیں ہوگا. بنانے والا اتنا بیوقوف نہیں ہوگا کہ اس نے 5-10 ایکسٹرا پیسز ڈال دیے ہوں گے. اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے انسان بنانے والے ہیں، انہوں نے اس میں 5-10 ایکسٹرا پیس نہیں ڈالے ہوں گے، کیا پوسیبل ہے کہ خدا نے کوئی ایکسٹرا پیس ڈال دیا ہو؟ نہیں ڈالا ہوگا. اصل اگر ڈال دے تو حکمت کے خلاف ہے، دانائی کے خلاف ہے. اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایکسٹرا پیس نہیں ڈالا ہوگا، تو مثال کے طور پہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ مثلا اگر تھوڑا سا اور تفصیل سے اس بات کو سوچیں، مثلا کیا خدا نے ایسا کیا ہوگا کہ اس پوری کائنات کے اندر، جو کائنات ہے وہ کتنی بڑی ہے، اس کو سوچنا بھی بہت مشکل ہے. کئی ملین سال، کئی ملین لائٹ ایئرز تک، اور دائرے کی لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کر سکتی ہے، کئی ملین لائٹ ایئرز تک بھی کائنات ہے. کئی ملین لائٹ ایئرز، لائٹ 1 ملین سال ٹریول کرے، کئی ملین سال تک ٹریول کرتی رہے تب بھی کائنات ہے یہاں پر. کتنے گیلیکسیز ہیں، کتنے ملکی ویز، کتنے سولر سسٹمز، ناقابل تصور ہیں. کئی بلین ہیں، ان کئی بلین گیلیکسیز میں، سولر سسٹمز کے اندر، کیا خدا نے کوئی ایکسٹرا کریٹ کیا ہوگا؟ اگر ایکسٹرا ہوتا تو خلق نہیں کر پائے، کیا ضرورت خلق کرنے، نہیں خلق کرے. بس اگر 1 بلین اسٹارز ایک گیلیکسی کے اندر ہوں، خدا نے ایک بھی ایکسٹرا خلق نہیں کیا ہوگا، صحیح ہے؟ اگر خدا نے کوئی اسٹار 1 بلین میں، اور 1 بلین کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے سٹارز کو دیکھتے ہوئے، بلین کوئی فگر نہیں ہے اس کا، کوئی ایکسٹرا خلق نہیں کیا ہوگا، تو ہمارا سولر سسٹم ایکسٹرا خلق ہوا ہوگا؟ پوسیبل نہیں ہے. 7 ارب انسان اس کے اوپر رہ رہے ہیں، کیوں ایکسٹرا خلق کیا ہوگا؟ اچھا اگر یہاں پہ سولر سسٹم اس نے ایکسٹرا خلق نہیں کیا ہوگا، یہ زمین تو ایکسٹرا ختم نہیں ہو سکتی جس کے اوپر 7 ارب بندے رہ رہے ہیں. خدا نے اپنی کتاب یہاں بھیجی ہے، اپنے نبی، اپنے امام کو یہاں بھیجا ہے، एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। अगर ये जमीन एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे 7 अरब इंसान है, इनमें कोई एक इंसान एक्स्ट्रा होगा? खुदा की हिम्मत के खिलाफ है। ना सिर्फ ये है, मैं आपकी खदमत में अर्ज करूँ, जो लोग इन मसाइल पर तहकीक करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि खुदा ने एक मच्छर भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया होगा। मैंने खासकर मच्छर की मिसाल क्यों दी, क्योंकि महजूब बलागा में मौला ने बहुत अजीब ताबीर इरशाद फरमाई है, दुरूद भेजे हो मोहम्मद। खुदा के इल्म को बयान करते हुए मौला इरशाद फरमाते हैं कि जंगल के, और जंगल में कितने दरख्त हैं, मलेशिया में रहने वालों को तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा, जंगली जंगल, जंगल के दरख्तों की छालों की सुराखों में रहने वाले मच्छरों की भिनभिनाहट को भी खुदा सुन रहा है। उस खुदा ने कोई मच्छर भी इजाफा खल नहीं किया होगा, उसकी हिकमत के ऊपर एक नक्स है। अगर खुदा नमता ऐसा करे, ये जो सब मैंने अपनी खिदमत में अर्ज किया वो सिर्फ इसलिए अर्ज किया कि ये पॉसिबल नहीं है खुदा नमता ने हमें और आप में से किसी एक को भी यूं ही खल्क कर दिया, नहीं किया होगा। अच्छा, अगर उसने मुझे यूं ही खल्क नहीं किया तो यूं ही 2016 में जिंदा रहने दिया होगा? भाई 2016 में ना भेजता, 1916 भेजते हैं। ये जो 100 साल पहले भेजता है, 100 साल बाद में भेजता है, ये किसी वजह से किया होगा या बगैर वजह की किया होगा? कि भी कोई वजह होगी, वरना 100 साल पहले भेज देता, किसी को 100 साल बाद में भेज देता। पता नहीं कितनी दफा मुझे अपनी जैसी एक उम्र में बीमारियां लगी होंगी जिसमें मर जाता और खुदा ने नहीं बनने दिया। पता नहीं कितनी दफा हमारे मुल्कों की जैसी ट्रैफिक में रहते हुए मरने के चांसेस बने होंगे, नहीं बनने दिया। और कराची जैसे में तो खैर आपको पता ही, और भी बहुत सारे मसाइल हैं मरने और जीने के, इन सब में खुदा ने बचा लिया। इसका मतलब क्या है, कोई हिकमत है या नहीं है? कोई तो है। अगर यहाँ तक आते हुए ये समझ में आ जाए कि खुदा ने किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा पैदा नहीं किया होगा, किसी को भी गलत वक्त में नहीं भेजा होगा, पॉसिबल नहीं है, असलन खुदा की हिकमत के खिलाफ है। बस एक सवाल रह जाता है, क्या मैंने पहचान लिया कि मुझे क्यों भेजा? यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं हम लोगों के, दो पहलू हैं। एक ये है कि खुदा क्या कर रहा है, और एक और पहलू ये है कि इस पूरी कायनात में एक पीस ऐसा है जो अपनी मर्जी कर सकता है, बाकी कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकता। सूरज अपनी मर्जी से निकले और मर्जी से डूब सकता है क्या? कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो। सबको वही करना है जो खुदा ने कहा है। एक पीस ऐसा है जिसको ये कहा है कि तुम्हें इजाजत देता हूं, अच्छा करना है तो अच्छा करो, बुरा करना है तो बुरा करो, बस एक। पूरी कायनात के अंदर ना सूरज चांद सितारे, ना पौधे जानवर कीड़े, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। सबको वही करना है जो खुदा कह रहा है। सिर्फ इंसान जिन इंस ऐसे हैं जिनकी अपनी मर्जी चल सकती है। तो किसी और के बारे में चैप्टर नहीं आएगा कि सूरत को खुदा ने क्यों बनाया और सूरत ने क्या किया, इस दोनों को कभी फर्क नहीं होगा। जो खुदा ने बनाया था वही होगा। सिर्फ हमारे मामले में एक क्वेश्चन आएगा, खुदा ने क्यों बनाया हमने क्या किया, बस। तो हम जैसे उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम पूरे सिस्टम को पहले देख लें, भाई सिस्टम क्या है, क्यों बनाया असलन, उसके बाद अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि इस पूरे सिस्टम के अंदर मैं और आप जो इसका एक कंपोनेंट है, हम लोग किस लिए बनाए गए हैं, हम लोग किस लिए भेजे गए हैं। तो मिसाल के तौर पर एक सवाल हमारे सामने ये आएगा कि भाई ये जो इंसान खल्क हुआ है इस कायनात के अंदर क्यों खल्क हुआ है, इसका मकसद क्या है। फिर दूसरा सवाल ये आएगा कि ये जो मैं यहां पर भेजा गया हूं ये क्यों भेज दिया गया हूं और मेरा इसके अंदर रोल क्या है, और इस खतरनाक सवाल के साथ कि मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। कोई और मखलूक ये सवाल नहीं कर सकती क्योंकि कोई चांस ही नहीं है उसका, सूरज वही करेगा जिसके लिए वो खल्क हुआ है। सिर्फ हम इंसान बचे हैं जो अपने आप से एक सवाल कर सकते हैं, हम जिस काम के लिए खल्क हुए थे वो ही कर रहे हैं या हम किसी और चीज में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे तफसीलात बहुत ज्यादा है मेरे जहन के अंदर आ रही हैं कि खुदा ने क्यों खल किया है, कैसे खल किया है और हमें और आपको क्या करना चाहिए। मैं वक्त को भी देखते हुए और ये देखते हुए कि जाहिर है कि भारत एक दो दिन ही है, इसमें आपकी खिदमत में कुछ तेजी से दोनों पॉइंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले जब भी इस सवाल को हल करने की कोशिश करें अपने आप से एक सवाल और कर लीजिएगा, और ये बहुत आसानी देता है हमें जवाब ढूंढने में। वो ये है कि हम जो भेजे गए हैं या हम जो इस दुनिया में हैं या हम जो जिंदा हैं, ये जो हमारी जिंदगी है कितनी है, जितनी है उतने के लिए तैयारी करो, उतने के लिए प्लान करो। सादा सा एक क्वेश्चन अपने आप से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सब कुछ जानते हैं, ये मैं आपको बताता चलूं जो मुझे अभी तक समझ में आया, मैं बहुत ज्यादा दोहराता भी हूं अपने लेक्चर्स वगैरह के अंदर, वो ये कि हमारा इशू ना जानना नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। हमारा इशू सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। एक बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों की हालत ऐसी है कि हम लोगों ने जैसे इंजीनियरिंग कर ली है, मास्टर्स भी कर लिया इंजीनियरिंग के अंदर, पीएचडी भी कर ली है, लेकिन आज तक किसी इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो कुछ हमें पता है उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि भाई ये जो खुदा ने हमें जिंदगी दी है, ये जिंदगी है कितनी, जितनी जिंदगी है उतनी प्लानिंग कर लो। मिसाल के तौर पर जैसे फर्ज फरमाइए अगर दुनिया में कोई होता है, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, उससे कहा जाए भाई तुमने अपनी लाइफ के लिए कितनी प्लानिंग की है, तो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई मेरे मुल्क के अंदर एवरेज लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मुझे उसको देखते हुए प्लान बना लेना चाहिए कि मसलन इतने अरसे तक मैं जॉब करूंगा, इतने अरसे के बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट में मुझे इतने पैसे मिलेंगे, उसको मैंने इतनी इतनी जगहों पर लगा दिया होगा, फिर जब वो मिलेगा तो मेरी मंथली जरूरतें इतनी होंगी और वो जरूरतें इस प्लान से पूरी हो जाएंगी, मामला खत्म हो गया। तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ता है भाई मेरी जिंदगी कितनी है। तो मेरे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि भाई तुम जिंदगी कहते किसे हो, कहते किसे हो, जिस्म को जिंदगी कहते हो या रूह को भी जिंदगी कहते हो। अगर जिस्म को जिंदगी कहते हो वो इतनी गुजर गई है, एवरेज के हिसाब से इतनी बची है। अगर रूह को जिंदगी कहते हो तो फिर एक बात हमेशा के लिए समझ लो, रूह ने कभी नहीं मरना है, इसमें जिंदा रहना है, इसमें नहीं मरना है। ये बका के लिए बनी है, ये फना के लिए नहीं बनी है, बाकी रहेगी। अच्छा, अब जब बाकी रहेगी फिर एक और मसला है, ये जो मेरी बॉडी है अगर ये 70 साल जिंदा रहे, 80 साल जिंदा रहे, हर रोज इसको खाना पानी चाहिए, हर मिनट इसको ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन मेरा हर लहजे कुछ ना कुछ करेगा, हत्ता सोते भी। अगर बदन ऐसा है कि इसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, रूह को भी चाहिए या नहीं चाहिए, खुदा कहता है कि चाहिए, रिस्क शोधा के लिए कहता है कि गुमान भी नहीं करना कि शहीद मर गए, बल्कि अल्लाह के नजदीक रिस्क पा रहे हैं, जरूरत होगी तो पा रहे हैं ना, बिलवाजे में तो नहीं दे रहा होगा, इसका मतलब ये कि आपकी रूह को भी चाहिए। तो एक अगला सवाल आएगा कि जो जिंदगी दुनिया की है, बदन की है, 70-80 साल की है, इसको तो मैं दे रहा हूं, इसको मैं संभाल लूंगा, ये जो रूह हमेशा जिंदा रहेगी इसका क्या होगा, इसके रिस्क का क्या बंदोबस्त होना है। तो अब क्या होता है, फौरन आपकी प्लानिंग शिफ्ट हो जाती है। यानी जैसा मेरे जैसा आदमी जिसने 50 साल यहाँ पे गुजार लिए हैं, कोई सोचता है भाई यहाँ के 50 साल तो गुजर गए और जैसे तैसे करके बाकी भी गुजर ही जाएंगे, बाकी का क्या होगा, बड़ी लंबी जिंदगी है। तो मेरे दिमाग में फौरन ये ख्याल आता है कि भाई ये बात हमें आज नहीं सोचनी चाहिए थी, ये तो हमें पहले दिन से सोच लेनी चाहिए थी जब हमारे हाथ में ताकत आई। तो मैं अपनी खदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ, ये हमारी जिंदगी है, इसमें प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। हम लोग 10 साल के लिए 10 साल की उम्र में कुछ पसंद करते हैं, 20 साल की उम्र में कुछ और सोचते हैं, 30 साल के होते हैं फिर कुछ और है, 40-45 साल के हुए कुछ और हो गए। आप अपनी जिंदगी को देख लीजिए, आपको कुछ कुछ तो याद होगा जब आप 10 साल के थे तो कैसे थे, जो चीजें आपको चाहिए थी वो अब चाहिए, अब उससे खुश हो जाएंगे जिससे 10 साल में खुश होते थे, बेकार है। प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। अकलमंदी क्या है, अकलमंदी ये एब्सोल्यूट प्रायोरिटी के ऊपर पहुंच जाए, इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं, किस बात पे पहुंच जाए, जो ट्रू प्रायोरिटी है क्या चीज, उसे कैसे लेना है, उसकी वजह ये होती है, सादा तरीन वजह ये होती है कि भैया आप 20 साल के हुए तो आपको पता चला जो 10 साल में आपको चाहिए था वो सही नहीं था, फिर जब आप 40 साल के हुए तो पता चला कि जो 20 साल में चाह रहे थे वो सही नहीं था। तो अभी 40 साल के है ना, अभी भी 15-20 साल 30 साल बाकी हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं, कंपनसेट भी कर सकते हैं पीछे वाले टाइम को, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन अगर खुदा ना करे मरते दमों पता चला कि अब तक की जितनी प्रायोरिटीज थी सबकी सब गलत थी, ये काम बहुत खराब होगा, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता होगा नहीं। ज्यादा बेहतरीन काम जो आप जैसे आपसे बात लोगों की जवानी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ, बेहतरीन काम ये है अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को फौरन सेट कर, और प्रायोरिटीज को सेट करते वक्त कुछ वो रखिएगा जो जमीन के ऊपर है और कुछ वो रखिए जो जमीन के बाद है। ये चंद साल यहाँ पर है, बस बड़ी लंबी जिंदगी आगे बढ़ी है, दोनों की प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए। अच्छा, प्रायोरिटीज को आप सेट कर लेंगे तो फिर अगला एक मरहला शुरू होगा, वो मिलेंगी कैसे, वो आप हासिल कैसे करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा कि भाई मुझे तो दुनिया में भी जिंदगी गुजारनी है और आखिरत में मुझे ख्वाह-ना-ख्वाह जाना ही है, तो क्या कोई ऐसा काम हो सकता है जो दुनिया में भी मुझे जिता दे आखिरत में भी मुझे कामयाब कर दे। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं अपने 24 घंटे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं, 12 घंटे दुनिया के लिए 12 घंटे आखिरत के लिए, ये नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं लिमिटेड इंसान हूं, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। फिर ये कि एक ही बंदे को दो दुनियाओं के लिए चलाऊं, ये भी मेरे बस में नहीं है, मैं एक सीपीयू पे कितने कंप्यूटर चलाऊं, एक ही चलाऊंगा। तो मैं इस एक इंसान को ऐसे लेके चलूं कि दुनिया में भी जीते आखिरत में भी जीते। तो तालिबे होने के नाते बरसों से मेरा जहन सिर्फ इसके ऊपर प्रायोरिटी के हिसाब से कह रहा हूं सोचता रहता है कि मुझे ऐसी जिंदगी का राज पता चल जाए जो मुझे दुनिया में भी जिताए आखिरत में भी जिताए,
दुनिया आखिरत में कामयाबी
के लिए। जैसे ही मैं ये कहूंगा तो आपके से बात मुमकिन है कि इस बात को सोचें, शायद ना भी सोचें, मुझे कि भाई ये दुनिया की जो कामयाबी है ये तो हमें पता है, आखिरत वाली आप बता दें, क्यों दुनिया का तो हमें पता है, अच्छी सी डिग्री ले लो कामयाबी हो जाती है, अच्छा सा बिजनेस पकड़ लो कामयाबी हो जाती है, غلط سے یا صحیح سے پیسہ لیا ہو باقی معاملہ حل ہو جاتا ہے. سپر ٹیکسی ڈرائیور بھی وہ پیننگ جزیرے کے اندر یہی کہہ رہا تھا, کہنے کا پیسہ ہونا چاہیے باقی سب صحیح ہو جائے. کوئی دنیا میں زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ اگر پیسہ آ جائے باقی معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ مولانا یہ جو دنیا والا معاملہ ہے تو آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں, آخرت والے کو آپ سنبھالیں اور ہمیں آخرت کا بتائیں. لیکن میں میرے سامنے ایک عجیب مشکل ہے, اور وہ مشکل یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جیتنے کے جتنے بھی فارمولے لوگوں نے بنائے ہیں بہت سارے ایسے فارمولے ناکام ہو گئے. بڑے فارمولے لوگوں نے بنائے, دولت ہو تو یہ ہو جائے گا, فلاں ہو تو یہ ہو جائے گا. میں نے بہت سارے لوگوں کے وہ تمام فارمولے ظاہری کامیابی کے ساتھ بھی اور بغیر ظاہری کامیابی کے دونوں کو ناکام ہوتے دیکھا ہے. مثال کے طور پر کیا, بھائی کسی نے ایک سادہ سا فارمولا بنایا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, پیسہ ہو باقی سب صحیح ہے. اچھا, دونوں صورتوں میں نے دیکھا ہے, نمبر ایک پیسہ تھا عین وقت پہ ہاتھ سے نکل گیا, ساری زندگی دوڑے اس کے پیچھے اور اس کم وقت نے اتنی بھی وفا نہیں کی کہ جب مجھے سخت ضرورت ہو تو میرے ساتھ رہ جائے. یہ ہم نے دیکھا ہے, بہت تھا عین موقع پر ہاتھ سے نکل گیا. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو میں نے کمایا ہے وہ نہیں جائے گا, جا سکتا ہے, کچھ بھی کر لو جا سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا گیا ہے, پوری طریقے سے گیا ہے. ہم نے بھی دیکھا, اچھا یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پیسہ کمایا وہ گیا نہیں, وہ ہے پھر بھی کامیابی نہیں ہے, پھر بھی کامیابی نہیں ہے, یہ بھی دیکھا ہے. بس کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ساری زندگی دوڑے جس پیسے کے پیچھے خوب کمایا. اچھا کسی کیٹیگری بھی دیکھی ہے جو دوڑی وہ بھی نہیں کمایا, یہ بھی دیکھی. بس ایک وہ کیٹیگری دیکھی جو ساری زندگی اپنے بنائے ہوئے ہدف کے پیچھے دوڑتی رہی, جو کہ پیسہ تھا اور نہیں ملا, ساری زندگی دوڑتے رہی. وہ بھی دیکھے ہیں جو ساری زندگی دوڑتے رہے, پیسہ مل گیا اور جب ضرورت پڑی تو ہاتھ سے نکل گیا, یہ بھی دیکھا ہے. یہ بھی دیکھا ہے کہ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ گئے ہیں, مل گئی ہے, ہاتھ لگی رہی ہے, کام نہیں آئی. ان تینوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, یہ فارمولا صحیح فارمولا نہیں, اس میں کوئی خرابی ہے. اب میں اللہ کے رسول کا فرمان اپنی حضرت میں اور عرض کروں تاکہ اس ذاتی تجربے کے ساتھ آپ کو وحی کے علم سے مدد ملے. درود بھیجے گا محمد والے دین اسلام میں, قرآن کریم ہو, اللہ کے رسول ہوں یا ان کی اولاد طاہرہ کے فرامین ہوں, بہت اچھی خوبی جو سمجھ میں آتی ہے, سادہ سادہ سی باتیں ہوتی ہیں, علم اس کے اندر بے انتہا ہوتا ہے, کرامت اور بڑی سادہ ہوتی ہیں. یعنی دنیا میں کوئی بڑا فلسفر ہو اتنی موٹی موٹی باتیں کرتا ہے, عام آدمی تو بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکتا. جتنا بڑا فلسفر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کتنا سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا, علیکم بالآخرہ تعتکر دنیا ساخرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. آخرت کی پرواہ کرو, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اچھا اس کا مطلب کیا ہے, اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی تو تم ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے دوڑو گے. اللہ کے رسول نے ہمیں کامیابی کا ایک فارمولا دیا ہوا ہے, اور فارمولا کیا کہہ رہا ہے, فارمولا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے دنیا ملنے والی ہے تو مطمئن رہو ایسا نہیں ہوگا. میں نے تین مسائل عرض کر دی, یا تو نہیں ملتی, یا تو ملتی ہے تو چلی جاتی ہے, اور یا ملتی بھی ہے تو کام نہیں آتا. अच्छा काम क्यों नहीं आती, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हमें बिजायर दुनिया में ऐसा लगता है कि भाई जिसके हाथ में दुनिया हो सब कुछ है, काम क्यों नहीं आती, उसकी वजह भी इंसान में आती है। एक मौका इंसान की जिंदगी पे ऐसा आता है कि उसको दुनिया से कम चाहिए होता है, मोहब्बतें ज्यादा चाहिए होती। और दौलत में और दुनिया में जो सबसे बड़ी मुसीबत है, ये मोहब्बतें खरीद के नहीं दे सकती, ये नौकर दिलवा सकती है लेकिन मोहब्बत करने वाले इंसान नहीं दिलवाती, मुसीबत इसके साथ ये है। बस अगर एक आदमी सोच रहा है ना मेरे पास पैसा बहुत सारा होगा, मैं सुबह के लिए अलहदा नौकर रखूंगा, दोपहर के लिए अलहदा रखूंगा, रात के लिए, नौकरों को तो ढेर लगा लेगा, इनमें चाहने वाला कोई नहीं होगा, मुसीबत सारी है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को चीजें और इंसान नहीं चाहिए होते, मोहब्बत चाहिए होती, उस वक्त ना चीजें काम आती हैं ना इंसान काम आते हैं, तो उसकी हालत बेचारे की कैसी हो जाती है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे जंगल में एक अकेला इंसान बैठा हुआ है, लाखों दरख्त हैं, उसके किसी काम के नहीं, क्यों, उसे इंसान चाहिए। ये सब समझ में आता है हम सब, ये होता है इंसान के साथ। तो आप अपनी जिंदगी में क्या कर लीजिए, आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लीजिए जिससे आपकी दुनिया की मुश्किल भी हल हो, आखिरत की भी हल हो जाए। और अगर दुनिया की मुश्किल आप ऐसे हल करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर दिया, इससे हल नहीं होगा। आपको तीन चीजें चाहिए होंगी, दुनिया के अंदर बात अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा पैसा चाहिए होगा, उसके साथ उससे ज्यादा बड़ा मामला एक और भी है, थोड़ा एहतराम चाहिए होगा, रिस्पेक्ट, और क्या चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत आपको चढ़ने वाले इंसान चाहिए, आपको तीन चीजें चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ी इज्जत चाहिए, थोड़ी मोहब्बत चाहिए। हम इंसानों के साथ मुसीबत क्या है, वो थोड़े पैसे के चक्कर में इज्जत और मोहब्बत खो बैठे हैं। फिर जब पैसा आ जाता है तो उस पैसे से इज्जत और मोहब्बत लेने जाते हैं, नौकर मिल जाते हैं, इज्जत और मोहब्बत नहीं मिलती। ये आपको पहले से प्लान करना होता है कि भाई ये पैसे के साथ जो इज्जत मिलनी है कैसे मिलनी है, और वो जो मोहब्बत मिलनी है उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला, वो कैसे मिलनी है। तो आप इस जुमले को ध्यान में रखिएगा कि हम इंसान लोग पैसे के चक्कर में इज्जत और मोहब्बत खो बैठते हैं, फिर बाद में जब पैसा आ जाता है तो इज्जत और मोहब्बत लेने जाते हैं और वो नहीं मिलती। आप कहेंगे भाई इज्जत तो मिल जाती है, कोई वजीर आजम बन जाता है तो इज्जत मिलती है, नहीं इज्जत नहीं मिलती है। ये डर और खौफ से सर झुकाना मिलता है, इज्जत नहीं मिलती। वो जो सर झुका के खड़ा होता है ना, उसको दिल दिल में गालियां दे रहा होता है, इज्जत नहीं मिलती उससे, आपको इज्जत भी चाहिए। तो ये तीनों चीजें लेने के लिए क्या करें, सादा सा एक काम करें, मैं आपकी खिदमत में नुस्खा जल्दी से अर्ज करूं, मुमकिन है अल्लाह ने जिंदगी इतनी रखी हो तो कल भी क्यों छोड़े, आज का काम आज पे करके जाए इंशाल्लाह, और ये भी पता अगला मिनट हो, लेकिन कर देना चाहिए इंशाल्लाह। खुदा नमकाल आपको और हम सबको कामयाबी नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले और आपका वक्त नहीं लूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की कि यहाँ हो क्या रहा है। तकरीबन 1996 से लेकर 2006 तक मैंने 10 साल रोजाना की जॉब्स की, रोजाना की, सुबह को निकलता था, रात को घर वापस आता था, ईरान से आने के बाद, वापसी के बाद 10 साल मैंने जॉब की, रोजाना 3 घंटे बसों में बैठता था। तो ये जो 10 साल थे ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरमाया बन गए कि मुझे ये समझ में आ गया कि भाई पब्लिक कर क्या रही है। इस 10 साल में मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी पढ़ाया, स्कूल के अंदर भी पढ़ाया, थोड़ा मोटा काम काज भी किया, सबको करने के बाद मुझे कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि वो कर क्या रहे। फिर 10 साल के बाद मैंने एक अजीब फैसला किया, मैंने कहा भाई ऐसा है अब मैं कुछ नहीं करूँ और मैं सारी जॉब छोड़ दी, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हुआ तो फिर मेरे सामने कुछ और हकायक खुले, फिर मुझे एक और बात समझ में आई, मुझे कि हम लोग रोजगार के चक्कर में और काम के चक्कर में अपने आप को माजत के साथ कर रहा हूँ घन चक्कर बना देते। घन चक्कर किसे कहते हैं? जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। अच्छा, इस बहुत ज्यादा घूमने की वजह से अकल माउफ हो जाती है, जो सामने आंखों से नजर आता है बस वही दिखता है। बहुत जरूरी होता है बातों का इंसान के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले, बाहर निकले, चक्कर से ऊपर आ जाए। अब नीचे जाके देखे भाई ये घूम क्या रहे। तो जब 10 साल के बाद मैंने बेरोजगारी का दौरा अपने ऊपर डाला तो मुझे एक मौका मिला कि देखो कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर मुझे एक और बात समझ में आई, वो ये कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें कामयाबी नहीं आ रही, इसमें कामयाबी नहीं आ रही। तो फिर बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बहुत टाइम लगा फिर ये समझने में कि कामयाबी आनी कैसे है, इन क्या चाहिए क्या है। फिर उसके बाद फिर जब मैं देखना शुरू किया, मैं आपका ट्रस्ट है वर्स करने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक बात समझ में आई कि हम लोगों के अमल का बहुत गहरा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक ताल्लुक है हमारी तकदीर से। आपने कभी देखा, मैं आपको एक अजीब सा एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे पास मेरे काम 9:30 बजे तक का टाइम होगा, मैं जल्दी से इसको खत्म करता हूँ। ये वाकया बड़ा अजीब है। एक दफा मुझे कुछ बीमारी हुई, जिस्मानी बीमारी, रूहानियत तो होती रहती है मेरे ख्याल में शायद, लेकिन जिस्मानी बीमारी हुई। तो वहाँ पे मेरा एक भाई एक नाबीना को लेकर आया घर पे। उस नाबीना को मैं पहले जानता था कि उसकी पहले आंखें हुआ करती थी, किसी बीमारी की वजह से उसकी आंखें चली गई, उसका भी इंतकाल हो गया पिछले महीने में। खान बार उसको लेकर आए और उस बंदे खुदा ने कहा कि मौलाना आप सेंटर टेबल रखी हुई थी उसके ऊपर कोहनी रखें और अपना हाथ सीधा कर लें और मुझे मेरा हाथ अपने नस पर रख दें। तो मैंने उसका हाथ सीधा रख के उस नस पर रख दिया। उसके बाद उसने ऐसा किया कि वो मुझे शुरू से बताता था, कहना मौलाना आपको 5 साल की उम्र में ये बीमारी हुई थी, 6 साल की उम्र में ये हुआ, 10-12 साल में ये हुआ। उसके बाद एक हाथ को फारिग किया, उसने दूसरा हाथ रखवाया, फिर उसके ऊपर नस टटोलता रहा और उसके बाद उसने बताया मौलाना आपका दिल ऐसा है, आपका लीवर ऐसा है, आपकी किडनी ऐसी है और इसको इस साल में ये डैमेज हुआ है, इसको इस साल में ये डैमेज हुआ है। भाई ये क्या कर रहे हो तुम, स्कैनर लगाया हुआ है तुमने, कोई क्या है? यानी मौलाना ये नब्ज पे है और नब्ज में सब कुछ है। मैंने कहा भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, ये नब्ज में सब कुछ है? मौलाना नब्ज में सब कुछ है। यानी अजीब बात ये थी, मैं आपको बहुत ताज्जुब की बात बताऊँ कि मेरे लीवर में एक प्रॉब्लम थी जो सिर्फ मैंने अपने अंदर ही रखा हुआ था। उस बंदे खुदा ने नस पे हाथ लगा के मुझे बता दिया आपकी लीवर में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे बॉडी में जो 5 साल की उम्र में हुआ है उसका असर, जब उसने मुझे देखा मेरे साथ में 42-43 साल की उम्र का था मैं उस वक्त तक था, उस बह चुके दुरुद भेजेगा मोहम्मद वाले फॉलो किया, 2 जनरेशन बाद भी उस कहत का असर बाकी था, जबकि सेम न्यूट्रिशन पे आ गए थे। यानी वो माएं हार्डली 1 साल उस तहत ज्यादा, जो जमाना था वो 1-1.5 साल का जमाना था, उस जमाने में वो प्रेग्नेंट हुए थे बच्चे, लेकिन उस कहत का असर उनके ऊपर 2 नस्ल बाकी रहा। सही? तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर 6-7 साल की उम्र में एक बीमारी हुई है उसका असर शायद 50-60 साल तक रहेगा। क्या हमारी कामयाबियां भी इसी तरह इंटरकनेक्टेड हैं? हाँ, ऐसे ही। जिस तरह हमारा जिस्म इतना कनेक्टेड है कि 6 साल की उम्र में अगर हमारी बॉडी के साथ कुछ हुआ है 60 साल के बाद शायद जाहिर होगा, 50 साल बाद शायद जाहिर होगा। हमारी कामयाबी भी ऐसी है। हमारी कामयाबी भी बहुत सख्त तरीके से हमारे अमल से कनेक्टेड है, चाहे वो हमने 20 साल पहले किए। अच्छा, मुमकिन है मुझसे कोई ये कहे कि भाई मैंने 5 साल की उम्र में एक बीमारी ली थी, उसमें मेरी कोई गलती थी? नहीं, असल बहुत सारी बीमारियां वायरसेस से आती हैं। वायरस मैंने वो डेलिबरेटली अपने घर पे बुलाया था, क्या मुझे लग गया था लेकिन वो जो वायरस लगा था उसका असर 40 साल के बाद मेरी बॉडी के ऊपर जाहिर हो रहा है। तकदीर और कामयाबियां भी ऐसी ही हैं, सिर्फ एक जरा सी आसानी है यहाँ पर, बॉडी में कुछ तब्दीलियां बगैर बताए हो जाती हैं, हमने इन्वाइट भी नहीं की होती। लेकिन हमारी तकदीर और कामयाबियां सिर्फ हमारे अमल से मुतासिर हो रही हैं, ये बगैर बताई नहीं होती। जो कुछ होगा अमल से होगा। अब वो अमल कब किया हो, मुमकिन 20 साल पहले किया हो, मुमकिन 25 साल पहले किया हो। अब मैं आपको कानून नज़र करने की कोशिश करता हूं, जिससे आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि आज के बाद से वाले को सही कर लें, फिर भी एक मुसीबत रह जाएगी। जो पीछे हो चुका है उसका क्या होगा, उसका भी अल्लाह ने क्लास कर दिया होगा। तो पहले तो उसको सही कर लें जो आज से बाद है, इंशाअल्लाह ताला। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले हर इंसान की जिंदगी में तीन ताल्लुकात हैं ओवरऑल, अगर आप इसको कैटेगरी बनाना चाहें दस भी बना सकते हैं आप, लेकिन अगर एक आसान कैटेगरी बनाना चाहें तो तीन कैटेगरीज में आप इंसान के ताल्लुकात रिलेशनशिप को तकसीम कर सकते हैं। एक इंसान की वो रिलेशनशिप है जो उसके खुदा के साथ है, और एक वो रिलेशनशिप है जो बंदों के साथ है, और तीसरा वो रिलेशनशिप है जो उसका अपने साथ है। एक खुदा के साथ समझ में आता है, बंदों के साथ वो भी समझ में आता है, अपने साथ कैसे, अपने साथ भी होता है। एक दफा एक इंसान अपने आप को रिस्पेक्टफुल देखता है तो बस हरकत नहीं करता, गिरी भी हरकत नहीं करता। एक दफा इंसान अपने आप को रिस्पेक्टफुल नहीं देखता, अपने अपने लिए स्टैंडर्ड नहीं बनाता, अगर अपने लिए स्टैंडर्ड नहीं बनाता फिर ये कुछ और है। बस तीन किस्म के रिलेशनशिप है, खुदा के साथ, बंदों के साथ, मेरा अपने साथ। ये तीनों रिलेशनशिप मेरी और आपकी कामयाबी को तय करेंगे, ये तय करेंगे हम कामयाब होंगे या ना, उसमें अल्लाह ताला कुछ और होने वाला है। अब इन तीनों के अंदर एक कानून जहन में रख लीजिए, हमारे जो आमाल होते हैं, मुझे बार बार तफसील में जाना पड़ रहा है, हमारे आमाल कम से कम दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो हम सोचते हैं, एक वो होते हैं जो हम कर डालते हैं। खुदा तआला ने अपने निजाम में इतनी खूबसूरती रखी है, अच्छे सोचने पर जजा रखी है, बुरे सोचने पे सजा नहीं रखी है। बड़ा अजीब, खुदा ने रहम किया, अच्छे सोचने पे जजा रखी है, बुरे सोचने पे सजा नहीं रखी। अच्छा, वो चाहता तो कहता भाई सोचने पे कुछ है ही नहीं ऐसा, वो कह देता कि भाई जब तक करोगे नहीं ना सजा ना जजा। लेकिन वो इतना रहीम है, इतना करीम है, उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा, वो ये भी कह सकता था कि सोचे पर जजा भी और सोचे पर सजा भी, वो पहला करता तब भी हम मारे गए थे, दूसरा करता फिर भी मारे गए थे। तो इतना करीम है, उसने कहा कि अच्छे सोचे पे जजा है, बुरे सोचे पे सजा नहीं है, निजाम रखा है। तो हमारे काम दो किस्म के हैं, एक वो जो सोचने के हैं, नियत जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी काम होता है, और एक वो जो करने के हैं। मैं करने के ऊपर आ रहा हूं इस वक्त, आप जो कुछ करेंगे अपने साथ, दूसरों के साथ, खुदा के साथ, वही आपको मिल जाएगा। सात ऐसी बात है, आप जो कुछ दूसरों के साथ, अपने साथ और खुदा के साथ करेंगे, किसने तय करना है आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। थोड़ी सी तशरीह अर्ज करता हूं, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले भाई। फर्ज कर लेते हैं कभी कभार आप मुश्किल में हैं, एक अलग मामला है, बीमारी में, सफर में, किसी और जगह फंसे हुए हैं, एक अलग मामला है। फर्ज कर लेते हैं ऐसे ही कि भाई आज जो था वो नमाज का वक्त था, मसलन फर्ज कर लें जैसे उन्होंने ब्रदर ने मुझे बताया था 7:38 फर्ज कर लेते हैं मगरिब का वक्त, सही। अच्छा मेरे पास सब कुछ तैयार था, मैं चाहता तो 7:39 पे नमाज पढ़ लेता, सही है? अच्छा मैंने नहीं पढ़ी, देर की, क्यों? क्यों ही? ये मेरा कौन सा रिलेशनशिप है, किसके साथ है? खुदा के साथ। थोड़ी सी डंडी मार ली ना, ये उठानी पड़ेगी। ये मेरी जिंदगी में जो मेरे रिलेशनशिप लोगों के साथ होंगे ना, उसमें आएगी नहीं। क्योंकि मैंने 25 मिनट 20 मिनट एक घंटा दो घंटा चार घंटा देर की है, इसकी मार मुझे कहीं और खानी है। क्यों? मेरा अमल है। इंसान को अपने अमल की के सारे नताइज को उठाना पड़ेगा। ये मेरा खुदा के साथ मामला हो गया। अब देखिए बंदों के साथ क्या हुआ। मसलन एक आदमी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, यूं ही कह रहा हूं, उसने मुझे 50 पेंसिलें दे दी, सब की सब छिली हुई थी। मैंने 50 पेंसिलें अपने हाथ में रखी, उसने कहा मुझे बाद में दे देना। मैंने कहा मैं दे दूंगा। एक पेंसिल उठा के मैंने एक लाइन मार ली, क्या फर्क पड़ा? सिक्का घिसा उसका, इतनी सी लाइन लगी। अरे ये मेरा रिलेशनशिप इस बंदे के साथ था ना, मैंने इसमें इतनी सी गड़बड़ की है, ये उठानी पड़ेगी। ये वापस आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये वापस आएगा। एक मुसीबत है, जितना मैंने किया उतना आएगा या बढ़ के आएगा? हाँ, अब यहां पे एक अजीब मुश्किल है। अपने मामले में तो कहता है कि मैं तुम्हारी बुराइयों को भी घटा दूंगा, लेकिन बंदों के मामले में कहता नहीं, जो करोगे बढ़ा बढ़ा के आएगा। बंदों के मामले में बहुत सख्त है। बंदों के मामले में क्या कहता है? जो करोगे जो वापस मिलेगा, जितना किया उतना नहीं मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। अच्छा खुदा है तू अच्छाई को भी बढ़ा के देगा? क्या ना अच्छाई को भी बढ़ा के दूंगा, बुराई को भी बढ़ा के देगा? हाँ बुराई को बढ़ा दूंगा। मेरी कामयाबी इससे मुतासर होगी या नहीं होगी? यकीनन होगी। मिसाल मैंने किसी बंदे के साथ कंजूसी कर दी, अब मेरे साथ क्या होने वाला है? और मेरे साथ ही बहुत बड़ी कंजूसी होने वाली है। जितनी मैंने की थी उतनी होगी नहीं, अनफॉर्चुनेटली बढ़ गई होगी। अच्छा अगर मैंने किसी के साथ अच्छाई की तो क्या होने वाला है? मेरे साथ अच्छाई होगी, जितनी मैंने की उतनी होगी या बढ़ गई होगी? ये जो बंदों के साथ रिलेशनशिप है ना, इसमें कानून बड़ा अजीब है। कानून आपका दोबारा उसका कानून क्या है? जो तुम दूसरों को दोगे वो तुम्हें मिलेगा, जितना मैं दूंगा या उससे बढ़ के, बढ़ के, अच्छाई में या बुराई में, दोनों में। सारी कामयाबी और नाकामी यहीं पर है। अच्छा अब आपको याद है मैंने कहा था आपको जिंदगी में कामयाबी के लिए तीन चीजें चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ी इज्जत चाहिए, थोड़ी चाहत मोहब्बत चाहिए। इन तीनों पर भी यही कानून चलता है क्या? इन तीनों पे भी यही चलता है। तो मसलन अगर मुझे इज्जत चाहिए तो मैं क्या करूं? इज्जत दो। मोहब्बत चाहिए तो क्या करूं? मोहब्बत दो। अच्छा अगर मुझे नफरत से बचना है तो क्या करूं? नफरत नहीं करूं। अगर मुझे मक्कारों से बचना है तो क्या करूं? मक्कारी नहीं करूं। झूठों से बचना है तो झूठ मत बोलो। कंजूसों से बचना है तो कंजूसी नहीं करो, क्योंकि जो तुम करोगे वो बढ़ बढ़ के तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब आपको जो कुछ चाहिए वो आप करना शुरू कर दो और ये आपकी जिंदगी में कामयाबी का राज है। बस वो जो मैंने आपसे कहा ना भाई, दौलत के पीछे भागे दौलत नहीं मिली, दौलत के पीछे भागे आई और एंड टाइम पे चली गई, और दौलत के पीछे भागे और मिली और काम नहीं आई, तो तीनों के साथ क्या मुसीबत है? इन्होंने जो किया था उसका नतीजा इन्हें मिलेगा, उसका नतीजा उठाना पड़ता है। बस आप जो करेंगे वो आपको उठाना पड़ेगा। वो जो हमारे पास है ना, आए करीनों का मैं आमन मिसकाल जर्रतिन खैरिन यरा, उसने लिखा है कि आखिरत में दुनिया में میں یہ عمل مسقال ذرت خیر ہی یرا، دنیا میں آخرت میں دونوں میں یہ سب ہوگا. اچھا اس سے میرے اور آپ کی کامیابی متاثر ہو رہی ہے. ہم نے کیا سوچا تھا؟ ہم نے سوچا تھا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا مل جائے گی، محبت اور عزت ہم لے آئیں گے. دنیا سے نہیں آؤں. پھر ایک اور مصیبت ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اگر چار فراڈ کیے تھے تو کیا ہوگا، وہ بھی سامنے آئیں گے. اب ایک اور مصیبت بھی ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ آزما کے بھی دیکھیے گا. برے کو نہیں آزمائیے ورنہ بہت برا ہو جائے گا، اچھے کو آزما لیجیے گا. ایک اور مصیبت بھی ہے، آپ نے فرض کریں کسی انسان کا ساتھ دیا، کسی انسان کا ساتھ دے دیا کسی کام کے اندر، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ کو کوئی ایسا بھیجنے والا ہے جو آپ کے کام آئے گا. جب وہ کس وقت بھیجے گا؟ جب مجھے ضرورت ہوگی یا جب مجھے ضرورت نہیں ہوگی؟ آپ شاید اس وقت میں کام آئے ہوں گے جب آپ کے پاس ایکسٹرا ہوگا، لیکن جب خدا بھیجے گا تو ایسے میں بھیجے گا جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر شدید ضرورت میں بھیجے گا. قرآن کریم میں شاید فرماتا ہے من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں پاؤ ایسے وقت میں بھیجے گا. تو احسان محترم، کامیابی اور ناکامی کو اس قانون کے اندر اگر آپ سمجھنا چاہیں یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کیجیے گا. مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
ایسی میں مثال کروں، چونکہ آج کل تھوڑوں سے ہوٹل میں رہ رہا ہوں نا، مثال کے طور پر بھائی میں ہوٹل میں رہ رہا ہوں، وہاں پر چادریں پڑی ہیں اور تولیہ بھی پڑی ہے، اور فرض کریں میرے جوتے کے اوپر گرد آ گئی ہے اور مجھے جوتے کی گرد صاف کرنی ہے، تو میں ہوٹل کی تولیہ سے کر دوں، مارے گا مجھے ہوٹل والا؟ وہ تو اپنی ڈرائی کلینر سے دھلوا لے گا نا تولیہ، تو میں جوتے سے کر دوں، کروں یا نہیں کروں؟ اچھا اب اگر میں کروں یا نہیں کروں تو میرا ریلیشن شپ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے یا اپنے ساتھ ایک معاملہ ہے؟ تنہا ہوں میں، میرا اپنے ساتھ ایک معاملہ ہے. وہ کیا؟ میں اپنا اسٹینڈرڈ گراؤں یا نہیں گراؤں؟ اپنے لیے اسٹینڈرڈ بناؤں یا نہیں بناؤں؟ تو میں اپنے لیے ایک بات سوچتا ہوں، میں اپنا اسٹینڈرڈ کیوں گراؤں؟ مجھے چاہیے اپنا اسٹینڈرڈ نہیں گراؤں. کیوں؟ اب میں آپ کو راز بتا دیتا ہوں، جہاں آپ اپنے ساتھ بھی اسٹینڈرڈ گرائیں گے نا، باہر سے آپ کا اسٹینڈرڈ گرنا شروع ہو جائے گا. یہ خدا نے عجیب نظام بنایا ہوا ہے اور یہ اتنا انٹیکٹ ہے ہمارے خیال میں، جب تک ہمیں سمجھ میں آیا ہے 50 سال کے بعد آ کر اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے. یہ دیکھو کیوں 50 سال پہلے یہ ہوا تھا. اب میں تو آپ کو 50 سال کہہ رہا ہوں، جو روایات سے اشارے مل رہے ہیں یہ نسلوں بعد بھی چہرہ دکھاتا ہے، نسلوں نسلوں بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا واقعہ بہت مشہور ہے. ہمارے دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں بس وہ بہت واقعہ تم بولتے ہو، یہ مت بولا کرو، میں پھر بھی بول دیتا ہوں کہ وہ لوگ گئے، دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کہا ہم اٹھا دیتے ہیں، اللہ نے کہا اس کے نیچے دو یتیموں کا خزانہ تھا، کانا ابوہما صالحا، چونکہ ان کا باپ صالح تھا. اور روایت کو بیان کرنے والے یاد آتا ہے مجھے، شاید آیت اللہ جوادی عمری آیت اللہ جنتی نے بتایا تھا کہ نہیں یہ باپ صالح نہیں تھا، اصل میں دادا صالح تھا. دادا کے مومن اور صالح ہونے کا اثر خدا نے کس کے بعد دکھایا؟ پوتوں کو دکھایا. دو دو تین تین نسل کے بعد خوبی خدا واپس لے آئے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ لے آتا ہے. کیوں؟ اس کے بعد اکاؤنٹنٹ کی ضرورت تھوڑی جو بھول جائے، خدا ہے وہ کروا لیتا ہے سارے کام. تو یہ جو بہت لوگ مرتے رہتے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے انشورنس جمع کرتے رہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کی کیا کام آئے گا، تو یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کامیابی بچوں کی کیسے کام آتی ہے. تم کسی ایسے بچے کو پال لو جس کا باپ نہیں ہے، تمہارے جانے بعد تمہارے بچوں کو خدا پلوا دے گا. کیوں نہیں پالتے؟ اتنا مر رہا ہوں میں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو جس کے بچے پڑھے اس کو پال لو، ان کو خدا پالے گا، اس کا نظام ہے. فیضان مسلم کی کامیابی کا راز ہے बस एक सादा सी बात है, आपको जो चाहिए है आप करना शुरू कर दें, यही आपके साथ होने वाला है। किन जगहों के ऊपर? तीन ताल्लुकात के अंदर, जो खुदा के साथ हैं, जो बंदों के साथ हैं और जो अपने साथ हैं। अपने साथ भी स्टैंडर्ड खराब मत करें, बंदों के साथ भी खराब ना करें और खुदा के साथ भी खराब ना करें। और सबसे खतरनाक जगह कौन सी इन तीनों के अंदर? अपने, खुदा और बंदों में सबसे खतरनाक कौन सी जगह? बंदों में। क्यों? अपने में दुखों का गफूर रहीम में बख्श देता है, मेरा मामला मेरे साथ मेरे ऊपर छोड़ देगा, लेकिन बंदों का मामला वो किसी पे नहीं छोड़ेगा, वो खुद खड़ा है। और बंदों में एक और इम्लास कर दू, कमजोर के साथ गड़बड़ करते वक्त वो डरिएगा, ताकत के ताकतवर के साथ गड़बड़ करने थोड़ी बहुत, वो खुद ही जवाब दे देगा। कमजोर के साथ ना करना, चूंकि इसके पीछे खुदा खड़ा है, इसके पीछे खुदा खड़ा है। तो ताकतवर के साथ चला लो, करके देख लो, तो वो खुद निपटेगा, तो खुद भी समझ में आ जाएगा। लेकिन कमजोर के साथ रिस्क नहीं लेना, उसके साथ रिस्क नहीं लेना जिसको पता नहीं कि आपने क्या बेमानी की है, क्योंकि अब शाहिद ही काजी है। जो रिवायात हमारे यहां कहती है कि जो शाहिद है वही काजी है, ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो ऐसा मतलब हम लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए कानून मिला हुआ है। और मैं तीसरी चौथी दफा की हिम्मत में अर्ज कर रहा हूं, जो आपको चाहिए वो देना शुरू कर दें, करना शुरू कर दें। और कानून फिर एक और बात भी सामने आई, जो मैं करूंगा वो मुझे मिलेगा, गलत करूंगा वो भी मुझे उठाना पड़ेगा। बस आपको अगर मिसाल के तौर पर अच्छे बिजनेस पार्टनर चाहिए ना, जो आपको चीट ना करें, तो आप बंदों को चीट ना करें, खुदा आपको ऑनेस्ट पार्टनर दिलवा देगा। इसी तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और बंदों के साथ मामला में और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया, जो सिफत आपको चाहिए वो करना शुरू कर दीजिए। छोटी सी एक बात अर्ज करता हूँ, एक और दोस्त की मिसाल अर्ज कर देता हूँ और आपकी जानत तमाम करूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, माशाल्लाह खुदा तआला ने उनको वसअत भी दी है मादी और मानवीय एतबार से, और दिल भी दिया है। मैंने एक दुआ पूछा ऐसी बातों बातों में कि भाई ये इतना ज़्यादा करते हो, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, यानी कि मैं शुरू शुरू में दिखावे में देता था, शुरू शुरू में मैं देता था वो दिखावे में देता था, और ऐसी अपनी शोबाजी के लिए, ताकि लोग देखेंगे कि भाई मैं कितना खर्च करता हूँ दीन की राह में। क्योंकि मैं पहले दिखावे के लिए देता था तो मुझे बहुत मज़ा आता था, लेकिन मैंने एक और बात नोट की कि मैं तो दिखावे के लिए दे रहा हूं, लेकिन उसको भी खुदा बढ़ा बढ़ा के वापस कर रहा है। यानी कि मैंने नोट किया कि मैंने तो दिखावे के लिए दिया था, लेकिन खुदा ने उसको भी बढ़ा बढ़ा के वापस किया। तो कहने की मुझे अपने ऊपर शर्म आई। अच्छा, ये कोई जो आदमी जिसको अपने ऊपर शर्म आ रही है ना, इसका मतलब है इसके अपने साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। इंसान अगर अपनी नजरों में गिर जाए ना, सब खत्म हो जाता है, इस इंसान का मामला खत्म हो जाता है। जो अपनी नजरों में गिर जाता है, फिर खुदा बंदों की नजरों में फौरन गिरवा देता है। अपने अंदर अच्छे रहो, अपने अंदर इज्जत बनाओ, अपने अंदर स्टैंडर्ड बनाओ। इसकी निशानी क्या होती है? अकेले में क्या करते हो? जो इंसान अकेले में अपने आप को संभालता है ना, इसका मतलब है अपने लिए इज्जत का कायल है, अपने लिए इज्जत का कायल। तो ये आदमी अपने लिए इज्जत का कायल था, कहने लगा मुझे खुदा से शर्म आई कि भाई मैं तो दिखावे के लिए देता हूं तब भी खुदा बड़ा बड़ा के दे रहा है। तो कहने लगा फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं दिखावे के लिए नहीं दूंगा, अब मैं खुदा के लिए दूंगा, और अब मैं बिल्कुल कोई गलत हरकत नहीं करूंगा दिखावे विखावे की। तो फिर जो मैंने देना शुरू किया तो वो और ही तरह से बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी भी एक दर्जा बाकी था, वो मेरे ख्याल बंदे खुदा उस लाइन पे सोच रहा होगा कि अभी वापसी को भी ना देखूं, सिर्फ देने की सोचूं। तो खुलूस का एक मरहला आएगा मेरे ख्याल, कि ये भी ना सोचूं कि वापस आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ खुदा को, ये अगला मरहला हो। लेकिन बाद हमें और आपको कामयाबी का कानून मिल जाता है। मोहब्बत चाहिए मोहब्बत दो, इज्जत चाहिए इज्जत दो। अच्छा जो आपको नहीं मिल रहा ना, फौरन गौर करना है मैंने क्यों नहीं, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को दे ही नहीं रहा। अगर आपको चाहने वाले बंदे नहीं मिल रहे तो देखना कि मैं ऐसा तो नहीं कि मैं जिंदगी में किसी को चाहता ही नहीं हूं, इस वजह से गड़बड़ मेरे साथ हो रही है। तो जो नहीं है उस पर देखो मैंने कहीं ब्लॉक तो नहीं किया हुआ इसे, और जो आप दे रहे हो ये जान लो कि ये वापस आने वाला है। इज्जत देते हो और गैर मंदी में भी, खुदा ना करे कोई नफरत देगा नफरत आई, मुनाफिकत दिया मुनाफिकत आई, धोखा दिया धोखा आएगा, और मुस्बत दोगे मुस्बत आएगा। अच्छा आप अगर आपको जिंदगी में खुशी चाहिए नहीं चाहिए, जो चाहिए तो खुशी कैसे आती है, महंगी महंगी चीजें खरीदो ताकि खुश हो जाओ, खुशी देने से आती, खुशी दो खुदा से खुशी लो, खुशी दो तो सही, किसको खुशी दी। और देने की बात इस पे नहीं हो रही कि मिसाल के तौर पर किसी ने मेरे पास काम किया मैंने उसको तनख्वाह पकड़ा दी, ये तो अगर काम ना करता मैं एक पैसे नहीं देता उसे, ये देने की बात नहीं हो रही, बेलौस देने की बात हो रही है। भाई बेलौस दो खुशी तो फिर आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बनता है, फिर आपको समझ में आता है। इज़्ज़त मोहतरम मैंने आपका इतना जो वक्त दिया उसमें आप लोग सिर्फ 20% चीजें याद रख पाएंगे आज से 1 घंटे के बाद, अभी से 1 घंटे के बाद सिर्फ 20% चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, 80% दिमाग से गायब हो जाएंगी। ये एक अजीब मामला है, मेरे जैसे आदमी के साथ एक सितम है कि उसको ये पता होता है कि ये लोग जो सुन रहे हैं ना ये 1 घंटे बाद सब भूल जाएंगे, ये तो इनके पास सिर्फ 20% रहेगा। अच्छा ये सितम मैंने भी अपने वालों के साथ किया होगा, जिनसे मैंने सुना था मैंने भी उनके साथ वही किया होगा, क्योंकि ह्यूमन वीकनेस है, इंसान का दिमाग ज्यादा रिकॉर्डिंग कर पाता है, 20% के करीब रिकॉर्ड करता है वो, और एक आध घंटे के बाद 20% रह जाता है, 24 घंटे के बाद उस 20% का भी 10% 15% रह जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये सब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ कोई पंच लाइन ऐसी दे देता हूँ कि वो बाकी रह जाए, फिर आपको ये याद ना रहे कि मौलाना की टोपी कैसी थी और मौलाना अफा कैसी पहनी हुई थी, ये सब चीजें याद नहीं रखिएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो पंच लाइन आपको याद रहनी चाहिए वो ये कि जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा, ये पंच लाइन अपने दिमाग में बना लीजिए और इसको जहन में रखिएगा हमेशा। बस आप मसलन टैक्सी में बैठने लगे, मसलन अब यहाँ पर कौन टैक्सी में बैठेगा, लेकिन बाहर अगर बैठने लगे और आपने ड्राइवर के साथ थोड़ा सा इंसल्टिंग बिहेवियर रखा है तो क्या होने वाला है, बस अब तैयार हो जाओ, बस अब हेलमेट पहन लो उनके ये आने वाला है वापस, और हमेशा अपनी जिंदगी को ऐसे देखते रहिएगा, हमेशा इस तरह देखते रहेगा, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और आपकी जिंदगी में कामयाबियां बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएंगी। हम इंसान में एक और बहुत बड़ी मुश्किल है, वो क्या है, अपने मामले में कुछ हिस्सा नजर आता है, बहुत बड़ा हिस्सा नजर ही नहीं आता, ये हम इंसानों के साथ अजीब मुश्किल है। कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का महादीरा, इंसान अपने नफ्स के ऊपर बसीरत रखता है, उज़्र पेश करता रहता है, उज़्र बनाता रहता है, तो क्या करता है उसकी उसकी पर्सनैलिटी में अगर 100 एस्पेक्ट्स हैं 25-30 को देखता है, बाकी सब के लिए उज़्र बनाकर उनको छुपा देता है। अगर ये इंसान ऐसा इंसान है जो अपनी शख्सियत को छुपा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कभी सही नहीं होगा, क्यों, ये रियलाइज ही नहीं करता है। जब तक बीमार रियलाइज नहीं करता ना कि मैं बीमार हूं, उसकी बीमारी सही नहीं होती, और ये जब तक छुपाता रहेगा इसकी पर्सनैलिटी सही नहीं होने वाली। तो आपको एक और अपने साथ मारेका करना होगा, वो क्या, कभी अकेले में बैठकर अपने आप को कुरेदना पड़ेगा कि कौन सी मेरी ऐसी खराबियां हो सकती हैं जो मैं कबूल ही नहीं करना चाहता कि मेरे अंदर है, हैं तो सही, मानता नहीं हूं, तो उन्हें कुरेद कुरेद कर निकालना पड़ेगा। आपको दीन में अदल है, खुदा किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा, जो हम करेंगे वो हमें लेना होगा, ये खुदा की जात है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, खुदा का निजाम है, میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. باقی اس کی رحمت کے تقاضے بہت ہیں, لیکن بنیادی نظام یہ نظام پروردگار کا احسان ہے, اس نے ہمیں اپنے دین سے آشنا کیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی تو خدا کو بڑا احسان. ہمیں نہیں معلوم خدا اس احسان کے بدلے میں ہم سے کیا کیا مانگے گا. کروڑوں کو جو نہیں پتا تھا وہ تمہیں پتا تھا, جو میں نے کروڑوں اربوں کو نہیں دیا وہ تمہیں دیا. آپ خود دیکھو دنیا میں 7 ارب کے قریب بندے ہیں, سب کو معلوم ہے امام حسین کون ہے؟ سب کو نہیں معلوم. انصاف سے پوچھے گا, یہ جو میرے اور آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے, خدا نہ چاہتا تو چھین نہیں سکتا تھا؟ چھین بھی سکتا تھا. بعض لوگوں سے چھینی ہے یا نہیں چھینی ہے؟ چھینی ہے. بعض لوگوں سے چاہیے تو خدا تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں محروم نہیں کیا اس نے, اور اس محبت کو ہمارے دلوں کے اندر اس نے قائم کر دیا. نشانی کیا ہے؟ نشانیاں بہت زیادہ ہیں. ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جا کے انسانوں کو دیکھیں آپ دنیا میں, خوشی میں, جشن میں, مسرت میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. کرسمس منانے والے کتنے ہیں دنیا میں؟ اربوں. مناتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھنا غم میں کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں؟ بھائی آپ زندگی میں خوشی منا رہے ہو, آپ کے ساتھ دینے والے ہوں گے؟ ہاں ہو جائیں گے. غم آیا وہ ساتھ دیتے ہیں لوگ؟ نہیں. تو آپ کیوں 1400 سال سے امام کے غم میں ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر دل میں کچھ نہ ہوتا تو غم میں ساتھ کیوں ہے؟ کیوں غم میں ساتھ ہے؟ بھائی نہ آپ کربلا میں پیدا ہوئے ہو, نہ آپ کا وطن کربلا قرار پا رہا ہے. اچھا اگر ہوتا بھی تو 1400 سال پہلے ہوا تھا کربلا, آپ کا کیا تعلق؟ یہ خدا نے پتا نہیں کیسے دلوں کو ایسا بنا دیا جیسے جو علی اصغر کے ساتھ ہوا, آج بھی 1400 سال کے بعد, اور یہ سب کا سب اثر ہے ہمارے اور امام حسین کے درمیان ایک رابطے کا. ایک رابطہ ہے, وہ رابطہ کیا ہے؟ وہ رابطہ وقت کا وہ امام ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں, خون کے آنسو روتا ہوں. امام حسین اور ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے, ہم نے تو کربلا پڑھی ہے یا سنی ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے گویا ہر وقت کربلا ہوتی رہتی ہے, ہر وقت ہوتی رہتی. عزیز مسائل کے بعد چند جملے اگر عرض کروں تو ہم نے تو صرف تاریخ میں سنا ہے نا کہ حسین کی بچی کو تماچے لگے تھے. یہ جو وقت کے امام کی ذات ہے وہ ان تمام واقعات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور کتنا سخت ہوتا ہے عزیزان محترم, اگر کچھ منٹس کے لیے میں اور آپ مسائل کے دوران دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں تخیلات میں کربلا کا احساس ہونے لگتا ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے دل پاش پاش ہو جائے گا. ذرا اپنے امام کی مصیبت کو سوچنا جن کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت کربلا ہو رہی ہے. عزیز, اور ہمارے اور آپ کے لیے, محبتوں کے لیے یہی کافی ہے. عجب لمحہ ہے وہ لمحہ جب سید الشہداء मैदान करबला में उस मुख्तसर से बच्चे को लेकर। दुनिया में एक मामला है और एक इज्जतदार के लिए मुसीबत क्या होती है। इज्जतदार के लिए पैसा होना ना होना मसला नहीं होता है। इज्जतदार के लिए, शराफतदार के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो उसे किसी बेगैरत से कुछ मांगना पड़ जाए। इमाम ने ऐसे ऐसे इम्तिहानात करबला में दिए जिसके सामने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम, एक वो वक्त आया जब हजरत अली अकबर ने आकर कहा कि बाबा अगर एक घूंट पानी का मिल जाता तो। यहाँ पे इमाम हुसैन ने इम्तिहान दिया, साकी कौसर है, हौजे कौसर के मालिक है और बच्चा एक घूंट पानी मांग रहा था। इमाम ने इम्तिहान दिया लेकिन इससे बढ़कर इम्तिहान क्या था, वो वक्त था जब अली असगर को हाथों पर लेकर आए और अशकिया से कहा कि अगर हमारे साथ दुश्मनी है और पानी नहीं देते तो बताओ इस शिशमाहे के साथ क्या दुश्मनी कर रहे हो। ऐसा कोई मंजर आया कि ये जो शकीउल कल्ब सुबह से शाम तक इमाम हुसैन के लश्कर से लड़ रहे थे, गर्दनें काट रहे थे, अचानक ये अशकिया भी मुंह छुपा कर रोने लगे। और उमर इसाद ने जो देखा तो हुरमला से कहा तीर चला, उसने एक अजीब जुमला पूछा, उसने कहा बाप का निशाना लूं या बच्चे का, किसका निशाना लूं, कहा बच्चे की गले की सफेदी का। बस तीरे सितम चला और सैयदुल शुहदा के हाथ पर जो बच्चा मुनकलिब हुआ तो अब एक अजीब मंजर आया, मुख्तसर सा खून है। अरे वो बच्चा प्यासा था, 6 महीने का था, उसके जिस्म से कितना खून निकला होगा, लेकिन वो खून इतना भारी हो गया कि हमारे पास रिवायात के मुताबिक सैयदाए ताहिरा मैदान हश्र में उस खून को लेकर आएगी।
जिन्होंने सैयद शहदा पे जुल्म किया उन्हें बदतरीन अज़ाब में मुब्तला फरमा। ऐ पाक परवरदिगार इन कुर्बानियों के सदक़े में वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। खुदाया उनके मुखलिस आबान व अंसार में करार फरमा। इमाम के लश्कर की तादाद में इजाफा फरमा। इमाम के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। हमारी जिंदगियों का इख्तिताम उनकी नुसरत की राह में शहादत करार फरमा। एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इख्लास मरहूमा उम्मे को